प्रकरण दो, अपभ्रंश काव्य। जब से प्राकृत बोलचाल की भाषा न रह गई, तभी से अपभ्रंश साहित्य का आविर्भाव समझना चाहिए। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। इस पुरानी प्रचलित काव्य भाषा में नीति, श्रृंगार, वीर आदि की कविताएं तो चली ही आती थीं। जैन और बौद्ध धर्माचार्य अपने मतों की रक्षा और प्रचार के लिए भी इसमें उपदेश आदि की रचना करते थे। प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वह भी आगे चलकर कुछ पुराना पड़ गया और काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया। अपभ्रंश नाम उसी समय से चला। जब तक भाषा बोलचाल में थी, तब तक वह भाषा या देशभाषा ही कहलाती रही। जब वह भी साहित्य की भाषा हो गई, तब उसके लिए अपभ्रंश शब्द का व्यवहार होने लगा। भरत मुनि विक्रम तीसरी शती ने अपभ्रंश नाम न देकर लोक भाषा को देश भाषा ही कहा है। वर रुचि के प्राकृत प्रकाश में भी अपभ्रंश का उल्लेख नहीं है। अपभ्रंश नाम पहले पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन विक्रम संवत 650 के पहले को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। भामह विक्रम सातवीं शती ने भी तीनों भाषाओं का उल्लेख किया है। बाण ने हर्षचरित में संस्कृत कवियों के साथ भाषा कवियों का भी उल्लेख किया है। इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की सातवीं शताब्दी में मिलता है। उस काल की रचना के नमूने बौद्धों की वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। संवत 990 में देवसेन नामक एक जैन ग्रंथकार हुए हैं। उन्होंने भी श्रावकाचार नाम की एक पुस्तक दोहों में बनाई थी, जिसकी भाषा अपभ्रंश का अधिक प्रचलित रूप लिए हुए है। जैसे जो जीर्ण शासन भाषियउ सोमयी कहियउ सारु, जो पालई सई भाऊ करी सो सरी पावई पारु। इन्हीं देवसेन ने दब सहाव पयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश नामक एक और ग्रंथ दोहों में बनाया था, जिसका पीछे से माइल धवल ने गाथा या साहित्य की प्राकृत में रूपांतर किया। इसके पीछे तो जैन कवियों की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, जैसे श्रुति पंचमी कथा, योग सार, जसहर चरियु, णय कुमार चरियु इत्यादि। ध्यान देने की बात यह है कि चरित्र काव्य या आख्यान काव्य के लिए अधिकतर चौपाई दोहे की पद्धति ग्रहण की गई है। पुष्पदंत संवत 1029 के आदि पुराण और उत्तर पुराण चौपाइयों में हैं। उसी काल के आसपास का जसहर चरियु यशधर चरित्र भी चौपाइयों में रचा गया है। जैसे बिणु धवलेण सयणु कीम हल्लई, बिणु जीवेण देहु कीम चल्लई, बिणु जीवेण मोक्ष को पावई, तुम्हारी सुकिम अपई आवई। चौपाई दोहे की यह परंपरा हम आगे चलकर सूफियों की प्रेम कहानियों में, तुलसी के रामचरितमानस में तथा छत्र प्रकाश, ब्रज विलास, सबल सिंह चौहान के महाभारत इत्यादि अनेक आख्यान काव्यों में पाते हैं। बौद्ध धर्म विकृत होकर वज्रयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं, जिनका परंपरागत स्मरण जनता को अब तक है। इन तांत्रिक योगियों को लोग अलौकिक शक्ति संपन्न समझते थे। ये अपने सिद्धियों और विभूतियों के लिए प्रसिद्ध थे। राजशेखर ने कर्पूर मंजरी में भैरवानंद के नाम से एक ऐसे ही सिद्ध योगी का समावेश किया है। इस प्रकार जनता पर इन सिद्ध योगियों का प्रभाव विक्रम की दसवीं शती से ही पाया जाता है, जो मुसलमानों के आने पर पठानों के समय तक कुछ न कुछ बना रहा। बिहार के नालंदा और विक्रमशिला नामक प्रसिद्ध विद्यापीठ इनके अड्डे थे। बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थानों को जब उजाड़ा, तब से ये तीतर बितर हो गए। बहुत से भोट आदि अन्य देशों को चले गए। 84 सिद्धों के नाम ये हैं: लूहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, शवरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरीपा, खड्गपा, नागार्जुन, कण्हपा, कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शीलपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्रपा, दोखंधिपा, अजागिपा, कालपा, धोम्बिपा, कंकणपा, कमरिपा, देंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुक्कुरिपा, कुचपा, धर्मपा, महीपा, अचिंतिपा, भल्लपा, नलिनपा, भुसुकुपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुठालिपा, कमरिपा, जालंधरपा, राहुलपा, घरवरिपा, धोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा, घंटापा, जोगीपा, चेलुकपा, गुंडरिपा, निर्गुणपा, जयानंत, चरपटीपा, चंपकपा, भिखनपा, भलीपा, कुमरीपा, चमरीपा, मणिभद्रपा, योगिनी, कनखलापा, योगिनी, कलकलपा, कंतालीपा, धहुरीपा, उधरीपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, पुतलीपा, पन्हपा, कोकालीपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, योगिनी, समुद्रपा, भलीपा। पा आदरार्थक पाद शब्द है। इस सूची के नाम पूर्वापर कालानुक्रम से नहीं है। इनमें से कई एक समसामयिक थे। वज्रयान शाखा में जो योगी सिद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए, वे अपने मत का संस्कार जनता पर भी डालना चाहते थे। इससे वे संस्कृत रचनाओं के अतिरिक्त अपनी वाणी अपभ्रंश मिश्रित देश भाषा या काव्य भाषा में भी बराबर सुनाते रहे। उनकी रचनाओं का एक संग्रह पहले म हर प्रसाद शास्त्री ने बंगला अक्षरों में बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से निकाला था। पीछे त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी भोट देश में जाकर सिद्धों की और बहुत सी रचनाएं लाए। सिद्धों में सबसे पुराने सरह सरोज वज्र भी नाम है जिनका काल डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य ने विक्रम संवत 690 निश्चित किया है। उनकी रचना के कुछ नमूने नीचे दिए जाते हैं। अंतस साधना पर जोर और पंडितों को फटकार। पंडिय सहल सत्त बखाणई, देह ही रुद्ध बसंत न जाणई, अमणा गमण रतेन विखंडिय, तो भी नियल जई भणई हऊँ पंडिय। जही मन पवन न संचरई, रवि ससी ना ही पवेश, तही बट चित्त विसाम करू, सरेहे कहिय उवेश। घोर अधारे चंदमणि जिमि उज्जो करे, परम महासुह एकु कणे, दुरिय अशेष हरे। जीवंतह जो नौ जरियसो अजरामर होई, गुरु उपएसे बिमलमई, सो पर धरना कोई। दक्षिण मार्ग छोड़कर वाम मार्ग ग्रहण का उपदेश। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, चियराव सहाबे मुकल, उजु रे उजु छाड़ी माँ लेहु रे बंक, नियही बोही माँ जाहु रे रंक। लुहिपा या लुहिपा संवत 830 के आसपास के गीतों से कुछ उद्धरण। का तरुवर पंच भिड़ाल, चंचल चीय पैठो काल, दिट करिय महासुह परिमाण, लुई भणई गुरु पुच्छिय जान। भाव न होई अभाव न जाई, ऐस संबोहे को पति आई, लुई भणई बट दुल्लख वीणाण, तिय धाये बिलसई अह लागेणा। विरूपा संवत 900 के लगभग की वारुणी प्रेरित अंतर्मुख साधना की पद्धति देखिए। सहजे थिर करी वारुणी साध, अजरा मर होई दिट कांध, दशमी द्वारत चिन्ह देखैया, आइल गराहक अपने बहिया, चौसठी घड़िय देट पसारा, पैठल गराहक नाही निसारा। कण्हपा संवत 900 के उपरांत की वाणी के कुछ खंड नीचे उद्धृत किए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 7। एक कण किज्जई मंत्रण तंत, णिय धरणी लय केली करंत, णिय घर घरणी जाबण मज्जई, ताब की पंच वर्ण बिहरजई, जिमी लोण बिलत जई पाणी एही तिमी घरिणी लई चित्त समरस जई तखणे जई पुणु ते समनित। वज्र यानियों की योग तंत्र साधनाओं में मध्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी रजकी आदि का अबाध सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कण्हपा डोमिनी का आह्वान गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोम्बी तोहरी कुड़िया छई छोई जाई सो बाय नाड़िया आलो डोम्बी तोए सम करिब मसांग निघिण कण्ह कपाली जोई लाग एक सो पदमा चौसठी पाखुड़ी तढ़ी चढ़ी नाच डोम्बी बापुड़ी हालो डोम्बी तो पुछमी सदभावे ऐससी जासी डोम्बी का हरि नावे गंगा जौना माझे रे बहई नाई ताही बुड़िली मातंगी पोया लीले पार करेई बाहतु डोम्बी बाहलो डोम्बी बाट त भइल उछारा सदगुरु पाव पए जाइब पुणो जिण उरा का नावड़ी खटी मन करियाल सदगुरु बाणे घर पतवाल चिय थिर करी गहुरे नाई अन्न उपाय पारण जाई। कापालिक जोगियों से बचे रहने का उपदेश घर में सास ननद आदि देती ही रहती थीं, पर वे आकर्षित होती थीं जैसे कृष्ण की ओर गोपियां होती थीं। राग देश मोह लाई अछार परम भीख लवए मुतिहार मारिय सासु नणंद घरे शाली माँ मारिया कर्ण भैल कबाली। थोड़ा घट के भीतर का विहार देखिए। नारी शक्ति दिय घरिय खदे अनहा डमरु बाजिय बीर नादे कान्ह कपाली जोगी पैठ अचारे देह नारी बिहरई एकारे। इसी ढंग का कुकुरिपा संवत 900 के उपरांत का एक गीत लीजिए। ससुरी नींद गेल बहुड़ी जाग कानेट चोर नीलका गई माग दिवसई बहुणी काढ़ई डरे भा रति भैले कामरु जा। रहस्य मार्गियों की सामान्य प्रवृत्ति के अनुसार सिद्ध लोग अपनी वाणी को ऐसी पहेली के रूप में भी रखते थे जिसे कोई बिरला ही बूझ सकता है। सिद्ध तांतिपा की अटपटी वाणी सुनिए। बेंग संसार बाढ़हिल जा दुहिल दूध के बेटे समा बलद बियाल गविया बांझे पिटा दुहिए इतना सांझे जोसो बुझी सो धनी बुधी जोसो चोर सोई साधी निते निते पियाला शिहे शम जूझय ढेड़ पायर गीत बिरले बूझ। बौद्ध धर्म ने जब तांत्रिक रूप धारण किया तब उसमें से 5 ध्यानी बुद्धा और उनकी शक्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्वों की भावना की गई जो सृष्टि का परिचालन करते हैं। वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। प्रज्ञा और उपाय के योग से इस महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए शून्य विज्ञान और महासुख। उपनिषद में तो ब्रह्मानंद के सुख का परिणाम का अंदाजा करने के लिए उसे सहवास सुख से 100 गुना कहा गया था, पर वज्रयान में निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया। शक्तियों सहित देवताओं के युगनबद्ध स्वरूप की भावना चली और उनकी नग्न मूर्तियां सहवास की अनेक अश्लील मुद्राओं में बनने लगी जो कहीं कहीं अब भी मिलती हैं। रहस्य या गुह्य की प्रवृत्ति बढ़ती गई और गुह्य समाज या श्री समाज स्थान स्थान पर होने लगे। ऊंच नीच कई वर्ण की स्त्रियों को लेकर मद्यपान के साथ पृष्ठ संख्या 8 अनेक विभत्स विधान वज्रयानियों की साधना के प्रधान अंग थे। सिद्धि प्राप्त करने के लिए किसी स्त्री का जिसे शक्ति योगिनी या महामुद्रा कहते थे योग या सेवन आवश्यक था। इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय देश के पूर्वी भागों में बिहार बंगाल और उड़ीसा में धर्म के नाम पर दुराचार फैला था। रहस्यवादियों की सार्वभौम प्रवृत्ति के अनुसार ये सिद्ध लोग अपनी वाणियों की सांकेतिक दूसरे अर्थ भी बताया करते थे, जैसे का तरुवर पंच विडाल। पंच विडाल बौद्ध शास्त्र में निरूपित पंच प्रतिबंध आलस्य हिंसा काम चिकित्सा और मोह। ध्यान देने की बात यह है कि विकारों की यही 5 संख्या निर्गुण धारा के संतों और हिंदी के सूफी कवियों ने ली। हिंदू शास्त्रों में विकारों की बंधी संख्या 6 है, गंगा जमुना माझे बहई रे नाई। इला पिंगड़ा के बीच सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से शून्य देश की ओर यात्रा, इसी से वे अपनी बानियों की भाषा को संध्या भाषा कहते थे। एक, डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य, बुद्धिस्ट एसोटेरियम। ऊपर उद्धृत थोड़े से वचनों से ही इसका पता लग सकता है कि इन सिद्धों द्वारा किस प्रकार के संस्कार जनता में इधर उधर बिखेरे गए थे। जनता की श्रद्धा शास्त्रज्ञ विद्वानों पर से हटाकर अंतर्मुख साधना वाले योगियों पर जमाने का प्रयत्न, सरह के इस वचन घट में ही बुद्ध हैं यह नहीं जानता, आवागमन को भी खंडित नहीं किया तो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं पंडित हूँ, मैं स्पष्ट झलकता है। यहाँ पर यह समझ रखना चाहिए कि योग मार्गी बौद्धों ने ईश्वरत्व की भावना कर ली थी। प्रत्यात्म वेद्यो भगवान उपमा वर्जितः प्रभु सर्वगः सर्वव्यापी च कर्ता हर्ता जगतपति श्रीमान वज्र सत्वसो व्यक्त भाव प्रकाशक व्यक्त भावानुगत तत्व सिद्धि दारी कपा के शिष्या सहज योगिनी चिंताकृत। इसी प्रकार जहाँ रवि शशि पवन आदि की गति नहीं, वहाँ चित्त को विश्राम कराने का दावा ऋजु सीधे या दक्षिण मार्ग को छोड़कर बंक टेढ़ा या वाम मार्ग ग्रहण करने का उपदेश भी है। सिद्ध कणहपा कहते हैं कि जब तक अपनी गृहिणी का उपभोग न करेगा तब तक पंचवर्ण की स्त्रियों के साथ विहार क्या करेगा। वज्रयान में महासुह महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनध स्त्री पुरुष का आलिंगन बद्ध जोड़ा की भावना की गई। कणहपा का यह वचन कि जिमी लोण बिलित जई पानी एही तिमी घरणी लय चित्त इसी सिद्धांत का द्योतक है। कहने की आवश्यकता नहीं कि कौल कापालिक आदि इन्हीं वज्रयानियों से निकले। कैसा ही शुद्ध और सात्विक धर्म हो, गुह्य और रहस्य के प्रवेश से वह किस प्रकार विकृत और पाखंड पूर्ण हो जाता है, वज्रयान इसका प्रमाण है। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा, जैसी कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं, राहुल सांकृत्यायन जी ने वज्रयानी सिद्धों की परंपरा के पृष्ठ संख्या 9 बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार वज्रयानी सिद्धों की एक पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ काम रूप के मछवाहे थे और चरपटीपा के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे, पर सिद्धों की अपनी सूची में सांकृत्यायन जी ने ही मत्स्येंद्र को जलंधर का शिष्य लिखा है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे यह तो प्रसिद्ध ही है। सांकृत्यायन जी ने मीननाथ या मीनपा को पालवंशी राजा देवपाल के समय में अर्थात संवत 900 के आसपास माना है। यह समय उन्होंने किस आधार पर स्थिर किया पता नहीं। यदि सिद्धों की उक्त पुस्तक में मीनपा के राजा देवपाल के समय में होने का उल्लेख होता तो वे उसकी ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते। 84 सिद्धों के नामों में हेर फेर होना बहुत संभव है। हो सकता है कि गोरक्षपा और चरंगीपा के नाम पीछे से जुड़ गए हों और मीनपा से मत्स्येंद्र का नाम साम्य के अतिरिक्त कोई संबंध न हो। ब्रह्मानंद ने दोनों को बिल्कुल अलग माना भी है। सरस्वती भवन स्टडीज संदेह यह देखकर और भी होता है कि सिद्धों की नामावली में और अब सिद्धों की जाति और देश का उल्लेख है, पर गोरक्ष और चौरंगी का कोई विवरण नहीं। अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम की 10वीं शताब्दी मानते नहीं बनता। महाराष्ट्र संत ज्ञान देव ने, जो अलाउद्दीन के समय संवत 1358 में थे, अपने को गोरखनाथ के शिष्य परंपरा में कहा है। उन्होंने यह परंपरा इस क्रम से बताई है: आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, ज्ञानीनाथ, निर्वृत्तिनाथ और ज्ञानेश्वर। इस महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्रनाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। भोट के ग्रंथों में भी सिद्ध जलंधर आदिनाथ कहे गए हैं। सब बातों का विचार करने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जलंधर ने ही सिद्धों से अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चले गए। वहाँ कांगड़े की पहाड़ियों तथा और स्थानों में रमते रहे। पंजाब का जलंधर शहर उन्हीं का स्मारक जान पड़ता है। नाथ संप्रदाय के किसी ग्रंथ में जलंधर को बालनाथ भी कहा है। नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ का टीला बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। मत्स्येंद्र जलंधर के शिष्य थे। नाथ पंथियों की यह धारणा ठीक जान पड़ती है। मीनपा के गुरु चरपटी नाथ हो सकते हैं, पर मत्स्येंद्र के गुरु जलंधर ही थे। संकृत्यायन जी ने गोरख का जो समय स्थिर किया है, वह मीनपा का राजा देवपाल का समसामयिक और मत्स्येंद्र का पिता मानकर। मत्स्येंद्र का मीनपा से कोई संबंध न रहने पर उक्त समय मानने का कोई आधार नहीं रह जाता और पृथ्वीराज के समय के आसपास ही, विशेषतः कुछ पीछे, गोरखनाथ के होने का अनुमान दृढ़ होता है। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मल्लार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। नागार्जुन संवत 702 प्रसिद्ध रसायनी भी थे। नाथ पंथ में रसायन की सिद्धि है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं। इतिहास से इस बात का पता लगता है कि महमूद गजनवी के भी कुछ पहले सिंध और मुल्तान में भी कुछ मुसलमान बस गए थे, जिनमें कुछ सूफी भी थे। बहुत से सूफियों ने भारतीय योगियों से प्राणायाम आदि की क्रियाएं भी सीखी, इसका उल्लेख मिलता है। अतः गोरक्षनाथ चाहे विक्रम की 10वीं शताब्दी में हुए हों, चाहे 13वीं में, उनका मुसलमानों से परिचित होना अच्छी तरह माना जा सकता है, क्योंकि जैसा कहा जा चुका है, उन्होंने अपने पंथ का प्रचार पंजाब और राजपूताने की ओर किया। इतिहास और जनश्रुति से इस बात का पता लगता है कि सूफी फकीरों और पीरों के द्वारा इस्लाम को जनप्रिय बनाने का उद्योग भारत में बहुत दिनों तक चलता रहा। पृथ्वीराज के पिता के समय में ख्वाजा मोइनुद्दीन के अजमेर आने और अपने सिद्धि का प्रभाव दिखाने के गीत मुसलमानों में अब तक गाए जाते हैं। पृष्ठ संख्या 10। चमत्कारों पर विश्वास करने वाली भोली भाली जनता के बीच अपना प्रभाव फैलाने में इन पीरों और फकीरों को सिद्धों और योगियों से मुकाबला करना पड़ा, जिनका प्रभाव पहले से जमा चला आ रहा था। भारतीय मुसलमानों के बीच, विशेषतः सूफियों की परंपरा में, ऐसी अनेक कहानियां चलीं जिनमें किसी पीर ने किसी सिद्ध या योगी को करामात में पछाड़ दिया। कई योगियों के साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन का भी ऐसा ही करामाती दंगल कहा जाता है। ऊपर कहा जा चुका है कि गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी, अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिए एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरखनाथ को दिखाई पड़ी थी। उसमें मुसलमानों को अप्रिय मूर्ति पूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी, अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपने शिष्य परंपरा में छोड़ गए थे। नाथ संप्रदाय के सिद्धांतों ग्रंथों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अश्रद्धा प्रकट की गई है। तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गए हैं। एक, योग शास्त्रम पठे नित्यम कि मन्ये शास्त्र विस्तरे। दो, न वेदो वेद इत्याहुर वेदा वेदो निगद्यते परमात्मा विद्यते येन स वेदो वेद उच्यते। न संध्या संधिरित्याहु संध्या संधिर निगद्यते सुषुम्ना संधिगः प्राण सा संध्या संधिरुच्यते। अंतः साधना के वर्णन में हृदय दर्पण कहा गया है, जिसमें आत्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब पड़ता है। तीन, हृदयम दर्पणम यस्य मनस्तत्र विलोकयेत दृश्यते प्रतिबिंबेन आत्मरूपम सुनिश्चितम। परमात्मा की अनिर्वचनीयता इस ढंग से बताई गई है। शिवम न जानामि कथम वदामि शिवम न जानामि कथम वदामि। इसके संबंध में सिद्ध लुहिपा भी कह गए हैं, भाव न होई अभाव न होई ऐसई संबोहे को पतियाई। नाद और बिंदु संज्ञाएं वज्रयान सिद्धों में बराबर चलती रहीं। गोरख सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है, नाथांशो नादो नादांशः प्राणः शक्त्यांशो बिंदु बिंदुरांशः शरीरम। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह गोपीनाथ कविराज संपादित। नाद और बिंदु के योग से जगत की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोगी दोनों मानते थे। तीर्थाटन के संबंध में जो भाव सिद्धों का था वही हठयोगियों का भी रहा। चित्त शोधन प्रकरण में वज्रयानी सिद्ध आर्य देव कर्णरीपा का वचन है, प्रतरन्नपि गंगायाम नैव श्वास शुद्ध महर्हति तस्माद् धर्म धियाम पुंसाम तीर्थ स्नानम तु निष्फलम धर्मो यदि भवेत स्नानात् कैवर्तानम कृतार्थता नक्तम दिवम प्रविष्टानाम मत्स्यादीनाम तु का कथा। जनता के बीच इस प्रकार के प्रभाव क्रमशः ऐसे गीतों के रूप में निर्गुण पंथी संतों द्वारा आगे भी बराबर फैले रहे, जैसे गंगा के नहाए कहो को नर तरीगे मछली न तरी जाको पानी में घर है। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि 84 सिद्धों में बहुत से मछुए चमार धोबी पृष्ठ संख्या 11 डोम कहार लकड़हारे दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। नाथ संप्रदाय भी जब फैला तब उसमें भी जनता की नीची और अशिक्षित श्रेणियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र ज्ञान संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था। एक, द सिस्टम ऑफ मिस्टिक कल्चर इंट्रोड्यूस्ड बाई गोरखनाथ इज does not seem to have spread widely through the educated classes. Gopinath Kaviraj and Jha, Saraswati Bhavan Studies. पर अपने को रहस्यदर्शी प्रदर्शित करने के लिए शास्त्रज्ञ पंडितों और विद्वानों को फटकारना भी वे जरूरी समझते थे। सद्गुरु का महात्म्य सिद्धों में भी और उनमें भी बहुत अधिक था। नाथ पंथ के जोगी कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इससे कनफटे कहलाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, इस पंथ का प्रचार राजपूताने तथा पंजाब की ओर ही अधिक रहा। अतः जब मत के प्रचार के लिए इस पंथ में भाषा के भी ग्रंथ लिखे गए तब उधर की ही प्रचलित भाषा का व्यवहार किया गया। उन्हें मुसलमानों को भी अपनी बानी सुनानी रहती थी, जिनकी बोली अधिकतर दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली थी, इससे उसका मेल भी उनकी बानियों में अधिकतर रहता था। इस प्रकार नाथ पंथ के इन जोगियों ने परंपरा साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर अपभ्रंश या ब्रज का था, अलग एक सधुकड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। देश भाषा की इन पुस्तकों में पूजा तीर्थाटन आदि के साथ हज नमाज आदि का भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार की एक पुस्तक का नाम है काफिर बोध। दो, यह तथा इसी प्रकार की कुछ और पुस्तकें मेरे प्रिय शिष्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल के पास हैं। नाथ पंथ के उपदेशों का प्रभाव हिंदुओं के अतिरिक्त मुसलमानों पर भी प्रारंभ काल में ही पड़ा। बहुत से मुसलमान निम्न श्रेणी के ही सही नाथ पंथ में आए। अब भी इस प्रदेश में बहुत से मुसलमान जोगी गेरुआ वस्त्र पहने, गुदड़ी की लंबी झोली लटकाए, सारंगी बाजा बजाकर कली में अमर राजा भर्तरी के गीत गाते फिरते हैं और पूछने पर गोरखनाथ को अपना आदि गुरु बताते हैं। ये राजा गोपीचंद के भी गीत गाते हैं, जो बंगाल में चटगांव के राजा थे और जिनकी माता मैनावती कहीं गोरख की शिष्या और कहीं जलंधर की शिष्या कही गई हैं। देश भाषा में लिखे गोरख पंथ की पुस्तकें गद्य और पद्य दोनों में हैं और विक्रम संवत 1400 के आसपास की रचनाएं हैं। इनमें सांप्रदायिक शिक्षा है। जो पुस्तकें पाई गई हैं उनके नाम ये हैं: गोरख, गणेश, गोष्ठी, महादेव, गोरख संवाद, गोरखनाथ जी की 17 कला, गोरख बोध, दत्त गोरख संवाद, योगेश्वरी साखी, नरवई बोध, विराट पुराण, गोरख सार, गोरखनाथ की बानी। ये सब ग्रंथ गोरख के नहीं उनके अनुयायी शिष्यों के रचे हैं। गोरख के समय जो भाषा लिखने पढ़ने में व्यवहित होती थी उसमें प्राकृत या अपभ्रंश शब्दों का थोड़ा या बहुत मेल अवश्य रहता था। उपर्युक्त पुस्तकों में नरवई बोध के नाम नरवई नरपति में ही अपभ्रंश का आभास है। इन पुस्तकों में अधिकतर संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद हैं। यह बात उनकी भाषा के ढंग से ही प्रकट होती है। विराट पुराण संस्कृत के वैराट पुराण का अनुवाद है। गोरख पंथ के ये संस्कृत ग्रंथ पाए जाते हैं: सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, वैराट पुराण। हिंदी भाषा में लिखी पुस्तकें अधिकतर इन्हीं के अनुवाद या सार हैं। हाँ, साखी और बानी में शायद कुछ रचना गोरख की हो। पद का एक नमूना देखिए: स्वामी तुम्हई गुर गोसाई, अम्हे जो शिव सबद एक बूझीबा, निरारंभे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई सब पुछया कहे, अबधु रहिया हाटे बाटे, रूष बिरस की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों पृष्ठ संख्या 12 की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। उनको उसी रूप में ग्रहण करना चाहिए जिस रूप में ज्योतिष, आयुर्वेद आदि के ग्रंथ। उनका वर्णन यहाँ केवल 2 बातों के विचार से किया गया है। एक, पहली बात है भाषा। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है, यह तो स्पष्ट है। उन्होंने भरसक उसी सर्वमान्य व्यापक काव्य भाषा में लिखा है जो उस समय गुजरात, राजपूताने और ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा थी। पर मगध में रहने के कारण सिद्धों का भाषा में कुछ पूर्वी प्रयोग भी, जैसे भैले, बुड़िली, मिले हुए हैं। पुरानी हिंदी की व्यापक काव्य भाषा का ढांचा सौर सेनी प्रसूत अपभ्रंश अर्थात ब्रज और खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी का था। वही ढांचा हम उद्धृत रचनाओं के जो सो, मारिया, पैठो, जा, किज्जई, करंत जावे, जब तब, ताब, तब तक, मैय, कोई इत्यादि प्रयोगों में पाते हैं। ये प्रयोग मागधी प्रसूत पुरानी बंगला के नहीं, शौर सेनी प्रसूत पुरानी पश्चिमी हिंदी के हैं। सिद्ध कण्हप्पा की रचनाओं को यदि हम ध्यान पूर्वक देखें तो एक बात साफ झलकती है, वह यह कि उनके उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी, रमैनी, गीत की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा सधुक्कड़ी है, पर रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। सिद्धों में सरह सबसे पुराने अर्थात विक्रम संवत 690 के हैं, अतः हिंदी काव्य भाषा के पुराने रूप का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। 2, दूसरी बात है सांप्रदायिक प्रवृत्ति और उसके संस्कार की परंपरा। वज्रयानी सिद्धों ने निम्न श्रेणी की प्रायः शिक्षित जनता के बीच किस प्रकार के भावों के लिए जगह निकाली यह दिखाया जा चुका है। उन्होंने बाह्य पूजा, जाति पाति, तीर्थाटन इत्यादि के प्रति उपेक्षा बुद्धि का प्रचार किया। रहस्यदर्शी बनकर शास्त्रज्ञ विद्वानों का तिरस्कार करने और मनमाने रूपकों के द्वारा अटपटी बानी में पहेलियां बुझाने का रास्ता दिखाया। घट के भीतर चक्र, नाड़ियां, शून्य देश आदि मानकर साधना करने की बात फैलाई और नाद, बिंदु, सुरति, निरति ऐसे शब्दों की उद्धरणी करना सिखाया। यही परंपरा अपने ढंग पर नाथ पंथियों ने भी जारी रखी। आगे चलकर भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय किस प्रकार के वेदांत के ज्ञानवाद, सूफियों के प्रेमवाद तथा वैष्णवों के अहिंसावाद और प्रगतिवाद को मिलाकर सिद्धों और योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ा, यह आगे दिखाया जाएगा। कबीर आदि संतों को नाथ पंथियों से जिस प्रकार साखी और बाणी शब्द मिले, उसी प्रकार साखी और बाणी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सदुकड़ी भाषा भी। यही दो बातें दिखाने के लिए इस इतिहास में सिद्धों और योगियों का विवरण दिया गया है। उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकते। उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़कर अब हम सामान्य साहित्य की जो कुछ सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। हेमचंद्र। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं, जिनमें से अधिकांश इनके समय से पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, पृष्ठ संख्या 13। भल्ला हुआ जु मारिया बहिणी महारा कंतु, लज्जे ज तू वयन सिंहु जई भग्गा घरु एंतु। भला हुआ जो मारा गया, हे बहिन हमारा कांत, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती। जई सो न आवई दुई घरु काई अहो मुहु तुझु, वयणु ज खंडई तौ सही ए सो पियु होई न मुझु। हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं। जे महु दृढ़ना दियढ़ा दइये पवसंतेण, ताण गणंतीय अंगुलियों जज्जरियाउ नहेण। जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते गिनते मेरी उंगलियां जर्जरित हो गईं। प्रिय संगमी कौ निदड़ी पियहो परखहो केव, मई बिन्निव बिन्नासिया निंदन एव न तेव। प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हूँ, न यो नींद न त्यों। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। सोम प्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमार पाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमार पाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। अपभ्रंश के पद्यों में कुछ तो प्राचीन हैं और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायउ जहि दियहि दह मुह एक शरीरु, चिंता व्यतई यही जननी, कवणु पियावों खीरु। जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ, तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं। बेस बिसिठह बारियई, जैवी मनोहर गत, गंगा जल पखा लियवी, सुनही की होई पवित। वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी। गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। प्रिय हौं थक्किय सयलु दिणु, तुह विरहगी किलंत, थोड़ई जल जिमि मच्छलिय, तल्लो विल्ली करंत। हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। जैनाचार्य मेरु तुंग, इन्होंने संवत 1631 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत हैं, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुरानी हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से पृष्ठ संख्या 14 प्रेम हो गया। इस प्रसंग के दोहे देखिए। झाली तुट्टी किम न मऊ, किम न हुए छरपुंज, हिंदई दोरी बंधी यऊ, जिम मंकर तिम मुंज। टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, छार पुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। मुंज भणई मुणाल वई, जुब्बण गयू न झूरी, जई शक्कर सखंड थिय तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता, यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं, तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। जामति पच्छई संपजई, सामति पहली होई, मुंज भणई मुणाल वई, बिघन न बेढ़ई कोई। जो मति या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे। बाह बिछोड़ भी जीह तुह हऊ, तेवई का दोसु, ही यठी जई नी सरही, जानो मुंज सरोसु। बाह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानू कि मुंज रूठा है। एऊ जम्मू न गहू गिउ, भड़सिरी खग्गु न भग्गु, तिखा तुरिय न माणिया, गोरी गली न लग्गु। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। विद्याधर, इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद्य प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं, जैसे भ भज्जीय बंगा भंगु कलिंगा, तेलंगा रणमुत्ति चले, मरहट्ठा धिट्ठा लगी अकट्ठा, सोरठा भ पाव चले, चंपारण कंपा पब झंपा, उत्थी उत्थी जीव हरे, कासीसर राणा कियऊ पाणा, बिज्जा हर भण मंती वरे। यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है।